प्रणाम। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन दिनांक 21 सितंबर 1993 को वृंदावन में दोपहर 3 बजे हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
बाबा गुरु जी से कैसे लाभ हो इसे समझाने की कृपा करें। किसी से लाभ लेना हो तो उसका हो जाए। जैसे पत्नी अपने पति की हो जाती है, कर्म मन वाणी सब तरह से पतिव्रता होती है। इस तरह से गुरु के शरण हो जाए। इसका अर्थ क्या है कि पत्नी का अपने बाप का गोत रहता ही नहीं, गोत ही पति का ही हो जाता है और पति की हो जाती है उसी घर की ही हो जाती है। इतनी दृढ़ हो जाती है कि उसको ये पता नहीं कि मैं और जगह जन्मी हूँ, याद नहीं है। बूढ़ी माई हो गई, पोते की बहू अगर खराब स्वभाव वाली आ जाए तो कहती है घर खोयो पराई जाई छोकरी ने आकर मेरा घर बिगाड़ दिया। तो ये याद नहीं है कि मैं ही पराई जाई हूँ, याद ही नहीं। यहाँ की हूँ मैं तो, आज थोड़ी पराई जाई आई है। ऐसे गुरु के शरण हो जाए तो गुरु जी से लाभ हो जाता है। हमने बात सुनी है, समर्थ रामदास बाबा थे, बहुत बूढ़े हो गए तो उनके शिष्य काम करते थे, सेवा करते थे। एक शिष्य को ड्यूटी दी थी भोजन करने बाद पान दे दे। तो बहुत बूढ़े हो गए तो उन्हें क्या करते, वो पान को चबा करके दे देते। तो किसने कह रही ऐसा करता है, तो करता मैं तो। तो एक दिन पूछा कि भाई ये किस में कूटते हो पान, किस में कूटते हो, जिस हमद में कूटते हो ना वो हमद चलाओ। तो ये इतना ना काट कर चल रही थी, ये है ऊपर का तो ये है, नीचे का ये है जिसमें कूटते काट कर दे दी दीवार पर। बताओ ये गुरु कृपा लेने की बात है। ऐसे गुरु के पराने तो गुरु की कृपा आप साफ हो जाती है। उसकी इतनी होती है कि जैसे छोटा बालक बीमार हो जाता है तो माँ को दवाई देनी पड़ती है, क्योंकि वो दूध ही पीता है माँ का केवल। तो माँ को दवाई खानी पड़ती है, उससे बालक ठीक हो जाता है। तो बालक जैसे दूध के ही परायण होता है माँ के, ऐसे भगवान गुरु महाराज की कृपा के ही परायण रहता है। तो उसके लिए उद्योग गुरु को करना पड़ता है, शिशु को फल हो जाता है, उसे कल्याण हो जाता है, उसे वो ज्यादा लाभ देता है। ये बात। और प्रश्न आया है कि छठे अध्याय का पहला श्लोक है, उसका अर्थ ठीक समझ में नहीं आया है, तो थोड़ा सा इसका विस्तार करेंगे। एक और तीन पन्ना आया है तो उसका अर्थ क्या है तो ये चला है पांचवा अध्याय के ऊपर, छठे अध्याय के आरंभ में श्री भगवान उवाच है, अर्जुन उवाच नहीं है। अर्जुन उवाच है पांचवा अध्याय के आरंभ में, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं संससी यस्ये एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि निश्चितम्। संन्यासं कर्मणां, कर्म का संन्यास और संन्यास पुनर्योग और फिर योग, कर्मों का संन्यास कर्म का योग दो बात बताते हैं उनमें श्रेष्ठ कौन सा है। तो इन दोनों का विवेचन करते करते पांचवा अध्याय पूरा किया। पांचवा अध्याय में एक विलक्षण अंत भक्ति की बात कही, ऐसा पूरा किया। अब वो जो दोनों सन्यासी योगी है उनमें कौन प्रसिद्ध कौन ठीक है, तो वहां भी कहा था कि संन्यास कर्मयोग निशेष करो, वो दोनों कल्याण करने वाले हैं। तो कल्याण करने वाले हैं तो योगी का भी कल्याण, जैसे संन्यास में जो प्राप्त होता है वही योग में प्राप्त हो जाता है, तो योग की प्राप्ति हो जाती, दोनों एक है। ये बात बताते हैं छठे अध्याय आरंभ में, अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति, कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी है और योगी है। क्यों सन्यासी योगी से कहा, यह सांख्य प्राप्ति स्थानम तद्योगी गम्यते एकम सांख्यं च योगं च यह पश्यति च पश्यति सांख्यं योगं एकम पश्यति, एक कैसे देखता है, वो एकता का वर्णन है। सन्यासी च योगी च दोनों में ये बात हुई। वहां भी बताया है कि नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, संकल्पों का जब तक त्याग नहीं होता कोई सा योगी नहीं होगा, ना सांख्य योगी होगा ना कर्म योगी होगा ना भक्ति योगी होगा ना ज्ञान योगी, कोई योग नहीं होगा संकल्पों का त्याग करने से होगा। तो संकल्प त्याग करने सब एक हो जाते हैं। तो वो क्या है कि अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय जिसके नहीं है और करते भी कर्म करता है वही सन्यासी है वही योगी है। ना मेरे निगम सक्रिय, केवल अग्नि का त्याग कर दिया, स्त्री का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, सन्यासी हो गया, इतने माने सन्यासी नहीं होता। अक्रिय क्रिया छोड़ दी, निष्क्रिय हो गया, इतने से योगी नहीं होता। योगी सन्यासी होना हो तो ये दो बात, कर्म के फल का आश्रय त्याग ना करना ही पड़ेगा, बिना कर्म फल के आश्रय त्याग कोई सन्यासी योगी नहीं होगा। ये इसका साधारण सूक्ष्म अर्थ है, विस्तृत साधक संजीवनी में आप देख लो, चाहे वो तत्व विवेचन में देख लो, तो इसमें मिल जाएगा। अब इसमें क्या समझ में नहीं आई है बात, कौन सी बात अधूरी रही है इसका हमें पता नहीं है, साफ लिख देते तो बता देता, परंतु थोड़ा सा विवेचन कर देता हूँ। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहता है वो चाहे सांख्य योग में चले चाहे कर्म योग में चले, ये दो बात है। यहाँ दो योगों की बात ही पांचवें अध्याय में कही है, अंत में भक्ति योग की बात कही है, नहीं तो एक बार सांख्य योग फिर कर्म योग फिर सांख्य योग फिर कर्म योग, इसी क्रम से ही पांचवें अध्याय पूरा किया है। तो वास्तव में कर्मयोग और सांख्य योग ये चरण में लोकेश में द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ, दो प्रकार की निष्ठा है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ये तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में दो निष्ठाएं अलग अलग बताइए। तो दोनों में ही अनाश्रित कर्म फलम ये तो आवेगा ही, कर्म फल का आश्रय न लिया जाए। अब कर्म का फल क्या होता है तो ये विस्तार से देखना हो तो 18वें अध्याय के 12वें श्लोक की टीका है, आप अच्छी तरह से पढ़ो। जो भाई ये पूछते हैं उनसे कहना है 18वें अध्याय का 12वां श्लोक आप ठीक तरह से पढ़े, कर्मों का विषय उसमें अच्छा विजन किया है, उसमें कोई त्रुटि रहती है तो वो फिर पूछो मेरे से, कल पूछ लो परसों पूछ लो, वो ठीक पूछो तो कर्मों का विषय साफ हो जाएगा। कर्म फल होता है वो फल दो तरह का बताया है, एक तात्कालिक फल होता है एक परिणाम में फल होता है। जैसे भोजन करो आप तो भोजन करने से तृप्ति होती है, ये तात्कालिक फल है कर्म का। और वो भोजन आपने न्याययुक्त किया है अन्याययुक्त किया है, शास्त्र विहित कर्म करके किया है, शास्त्र निषिद्ध कर्म करके झूठ कपट बेईमानी करके अन्न लाकर खाया है, तो वो जो है इसका फल अदृष्ट होगा, मन अभी नहीं होगा, अगली जन्म में होगा, इस जन्म में भी हो सकता है परंतु अगली जन्म में होगा, वो अदृष्ट फल है। ये दृष्ट फल है, भोजन करने से तृप्ति हो जाए, जल पीने से तृप्ति हो जाए, दृष्ट फल है। तो दृष्ट फल करना कर्म के फल का आश्रय ना दृष्ट का लेना है ना अदृष्ट का लेना है, ये चार भेद होते हैं, एक दृष्ट और अदृष्ट, एक प्राप्त और एक अप्राप्त, प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी जो हमारी सुख सुविधा जैसी मिली है अथवा दुविधा है, कुछ ऐसी अनुकूलता प्रतिकूल परिस्थिति है, ये तो है प्राप्त फल, और अगर ये अनुकूलता प्रतिकूलता आने वाली है वो अप्राप्त फल है। तो प्राप्त फल और अप्राप्त फल और दृष्ट फल और अदृष्ट फल, फल चार होते हैं, इनका आश्रय न हो। अभी दुख अभी परिस्थिति खराब आवे तो दुख ही न हो, अभी अच्छी परिस्थिति तो सुख भोग न हो, और अदृष्ट फल दृष्ट फल में तृप्ति होगी, परंतु अदृष्ट फल उसका पाप और पुण्य होगा, वो अदृष्ट फल होगा, और अभी तृप्ति और है ये अदृष्ट फल है। तो इन चारों ही फल का आश्रय नहीं है, आश्रय मतलब अनुकूलता में कोई खुशी नहीं है, प्रतिकूलता में कोई दुख नहीं है। अरे कर्मों के फल का आश्रय लोगे तो अनुकूलता में सुख होगा ही, और प्रतिकूलता में राजी होंगे, प्रतिकूलता में नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो कर्म फल का आश्रय लेने पर वो सांख्य योगी होगा ना कर्म योगी होगा, कर्म का आश्रय। तो ये तो आश्रय बताया, अरे कर्ता क्या है, कार्य कर्म, कर्त करने लायक कर्म। करने लायक कर्म कौन सा होता है, जिसे करने की शास्त्र ने आज्ञा है और आप कर सकते हो और आप में योग्यता है, जो करते हो वो कार्य कर्म करने लायक होता है। कार्य कर्म करो होती है कार्य मन कर्तव्य, तो कर्तव्य कौन सा है, जिसको आप सुख पूर्वक कर सकते हो वो कार्य होता है, आप नहीं कर सकते तो आपके लिए कार्य नहीं होता। कोई कैसे मकान को उठाकर वहां रख दो तो आपका ऐसा नहीं कि मालिक ने कह दिया नौकर करना ही पड़ेगा, वही करना जो कर सकता है, अपनी शक्ति में है तो आपकी शक्ति के अनुसार हो और शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुरूप हो, ये दो बात। कार्य कर्म वही होगा जो शास्त्र के और लोक व्यवहार के अनुकूल है और करने भी आप में सामर्थ्य है, वो आपका कर्तव्य होता है। कर्तव्य कठिन कभी होता ही नहीं, अरे कठिन होता है वो कर्तव्य होता ही नहीं, ये कार्य कर्म है। ऐसा कर्म करता है वो सांख्य योगी कर्म योगी दोनों हो गए, सब योगी हो जाएगा। असन्यस्त संकल्प कोई योगी नहीं होता, जिसके मन में इच्छा रहती है पदार्थों के भोगों की इच्छा, अनुकूलता में राजी प्रतिकूलता में नाराज होता है, तो वो न सांख्य योगी हो सकता है न कर्म योगी हो सकता है, ये इसका तात्पर्य है। अब वो भाई किस अंश में नहीं समझा है इसका पता नहीं, ये थोड़े में मैंने सार बात सब बात बता दी है। वो शंका किए बिना मेरे को ये पता नहीं किस विषय में पूछना चाहते, शंका करे तो उस विषय का विषय मनन करते, ये बात है। नारायण 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 नारायण। अब तीसरा पुरुष आता है, पुरुष सुखा तीसरा पुरुष हमारे तो यही बातों में जड़ू है, हमारे तो बात में गई है तो क्या करें। तीसरा आया है अकाम सर्व कामोवा और मोक्ष काम उदार ही तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। तो परम पुरुष की प्रार्थना पूजन है, उसका जो भजन है, उसका अर्पण है, वो यजन का यजन यजन थे तो यजेत, तो यज होता है यज देव पूजा संगति करण दान करता आता है तो पूजन करे। पर तीव्र भक्ति योग, तीव्र भक्ति योग क्या होता है, तो जैसे ध्यान देकर सुने इसको, जैसे जिसके धन की तीव्र इच्छा होती है वो किसी काम में करता है तो धन के लिए करता है। उसने पूछा है कि कोई कर्मी हो, कोई अपने माँ बाप की सेवा ही करता है, कोई विद्या ध्यान ही करता है, कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई दलाली करता है, कोई गुरु सेवा ही करता है, तो ऐसे कार्यक्रम तो कई तरह के हैं। तो तीव्र भक्ति योग क्या होगा, अत्यंत लोभ वाला पुरुष चाहे कुछ काम करने वाला हो परंतु धन का नाश सह नहीं सकता। पैसा दो पैसा भी नष्ट क्यों हो गया, नौकर से कहा तो तुम जाओ एक झाड़ू ले आओ, तो झाड़ू लाने को गया, उसमें एक झाड़ू ले तो 3 पैसों में मिलेगा, 2 हो तो 5 पैसों में मिल जाएगा, तो वो 1 पैसा 3 पैसा देकर झाड़ू ले आया। कहां से लाए, क्या भाव था, कहते भाव ये कहा कि एक झाड़ू लो तो 3 पैसे लगेंगे और 2 लो तो 5 पैसे लगेंगे, 5 क्यों नहीं लाया तू, वो सही नहीं होता है, कैसा बेअकल आदमी है, 3 पैसा दे आया अब 2 का 6 पैसा लगेगा, नहीं तो 3-5 पैसा में 2 झाड़ू आ जाते, वो नहीं लाया तू, ये होता है कि नहीं, मान एक पैसा भी नुकसान में अच्छा नहीं लगता, उसको मूर्ख है कहीं लेंट कहीं, क्या लाया है तू, क्या खरीदता, तो अच्छा नहीं लगता, तो लोभ से 1 पैसा का नुकसान भी सह नहीं जाता। ऐसे तीव्र योग में भगवत प्राप्ति के साधनों में किंचित मात्र भी कहीं गलती होती है वो सही नहीं जाती। भीतर से भाव भगवत प्राप्ति का तीव्र होता है, तीव्र भक्ति योगे न, भगवान ही केवल भक्ति में तीव्रता है, तो उसमें किसी तरह का नुकसान कुछ सह नहीं सकता, वो तीव्र भक्ति योग है। उसमें भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान के स्वरूप अलग अलग नहीं है, सगुण हो निर्गुण हो साकार हो निराकार हो, कृष्ण भगवान हो राम जी हो चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे शक्ति हो चाहे गणेश हो चाहे सूर्य हो, भगवान का स्वरूप चाहे सो हो, पर अपना तीव्र भक्ति योग ये होगा, उनके प्रति अनन्य निष्ठा ऐसी होगी कि भगवत प्राप्ति में विघ्न किसी तरह का हिस्सा नहीं सकता, कोई आचरण भक्ति से विरुद्ध कर नहीं सकता, अत्यंत लोभी धन नष्ट हो जाए ऐसा काम कोई कर नहीं सकता, भूल से चाहे हो जाए तो भूल तो फिर माफ हो जाएगी भगवान के यहाँ, पर कोई काम जान करके ऐसा नहीं कर सकता जिसमें 1 पैसा भी हानि हो, तो अत्यंत लोभी है उसका धन कमाने में कैसे भाव होता है, ऐसा भाव भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के साधन में होना चाहिए। तीव्र भक्ति योगे न, वो तीव्र भक्ति हो मानो उद्देश्य एक ही बन गया, जैसे उसका धन कमाना है, अब ठीक और बेठीक और झूठ और कपट और बेईमानी हो धोखेबाजी हो सब स्वीकार है, पर धन का नुकसान स्वीकार नहीं है, धन आना ही चाहिए, तो उसमें तो पाप का आश्रय लेगा, इसमें पाप का आश्रय तो लेगा नहीं, इसमें किसी तरह से हमारी वृत्ति भगवान से अलग हो जाए तो वो मैं नहीं कर सकता, भगवान की प्राप्ति का साधन ही वो तत्परता से करेगा, भगवान का स्वरूप चाहे हो सगुण हो निर्गुण हो साकार हो निराकार हो, उसके स्वरूप में भिन्नता में कोई हर्ज नहीं है, परंतु बात यह है कि उसकी रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए, हरदम भगवान का चिंतन हो भजन हो। तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी। नारद भक्ति सूत्र में यह लिखा है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, तदर पिता खिलाचारिता अखिल आचरण भगवान के अर्पण कर दिया, यत करोषि यदश्नाषि यद जोहोषि तदाशि यत यत तपस्य कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्। यत करोषि जो कुछ करता है काम, चलना फिरना उठना बैठना सोना जगना खाना पीना नहीं खाना पीना अलग ले लिया है, और जितने काम करता है यदश्नाषि जो खाता है पीता है, और संसार के जितने काम यद करो कि इसका बड़ा बड़ा पेट है इसका, जो कुछ करता है और जो खाता है, मनुष्य शरीर निर्वाह के लिए काम करता है, व्यापार आदि परिवार के लिए करता है, समष्टि के लिए व्यष्टि के लिए जितना जो काम करता है सब का सब, और 3 ये बात ये अंतम यत करोषि यदश्नाषि यद जुहोषि ददाषि यद तपस्यसि यज्ञ दान तब, ये 3 शास्त्रीय, तो शास्त्रीय व्रत है तीर्थ है सब 3 के अंतर्गत आ जाता है, तो शास्त्रीय कर्म करे चाहे लौकिक काम करे सबका सब भगवान के अर्पण है, भगवत प्रीत्यर्थ करता है, खाता है तो भगवत प्रीत्यर्थ, पीता है तो भगवत प्रीत्यर्थ, सोता है तो भगवत प्रीत्यर्थ, जगता है तो भगवत प्रीत्यर्थ, चिंतन करता है तो भगवत प्रीत्यर्थ, और अब वो क्या कहें आपको बुरी न लग जाए, टट्टी पेशाब फिरता है स्नान करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, अपने लिए कोई नहीं, कोई काम नहीं करता अपने लिए, सब भगवत प्रीत है, भगवान प्रसन्न हो। कैसे ऐसे भी भगवान प्रसन्न होते, भगवान प्रसन्न होते। बालक अच्छी तरह से भोजन कर लेता, माँ राजी होती है कि नहीं? ऐसे भगवान की प्रसन्नता के लिए भोजन करें तो भगवान राजी होंगे। वो भोजन हमारा होगा शास्त्र की दृष्टि से पवित्र और आयुर्वेद दृष्टि से पवित्र, शरीर के लिए लाभदायक हो और अभी वर्तमान में लाभदायक हो और परिणाम में लाभदायक हो, ऐसा भोजन तो शरीर के लिए भी और शास्त्र की दृष्टि से शास्त्र निषिद्ध कोई आचरण कोई भोजन न हो, तो भोजन भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, और करना भी शास्त्र की मर्यादा के अनुसार और लौकिक मर्यादा के अनुसार, मर्यादा से भ्रष्ट नहीं, ऐसे साधन हो करता है तो वो भगवत प्रीत तीर्थ होता है सबका सभी। इसका फल बताया गया है, शुभ अशुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंधन, शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो क्या करता है, सब अर्पण करता है, शुभ ही है, कहते अनेक तरह के शुभ अशुभ कर्म है, सबसे मुक्त हो जाता है। आश्रय केवल भगवान का है और नहीं है, भगवत प्रीत तीर्थ करता है, इसमें भक्ति की ही मुख्यता है। जैसे बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तो पत्र पुष्प फल जल भक्ति से देवे तद हम भक्तियों प्रियतम, भक्ति का दो बार प्रयोग आ गया इसमें, भक्त्या प्रयच्छति और भक्तियों प्रियतम, भगवान द्वारा किया हुआ उपहार भेज भक्ति द्वारा, तो भक्ति का मतलब भगवान की प्रसन्नता है। भक्ति नाम भजन भगवान का, भजन तो नाम से भी भजन नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, उसमें विलक्षणता आ जाती है। काकभूषण जी ने अपने पहले जन्म की बात बताई, मैं ब्राह्मण था और ऐसे ऐसे मैं काम करता था कलयुग में, आचरण बड़ा अच्छा करता था, दम्भी था, पाखंडी था, वो सब कुछ बताया। वहाँ महाकालेश्वर में उज्जैन में था तो वहाँ गुरु जी का अपमान कर दिया, वे आए मैं उठा नहीं, भगवान शंकर ने उनको साप दिया, वो साप हुआ सर प्रहार बना, सब बात बताई। तो ब्राह्मण था फिर मन में मेरे सच्ची पैद जन्म हुआ ना तो वह साप गिजोड़ी भोग ली, तो भगवान शंकर ने कृपा कर दी, जन्म नाम पीत गया। अब ब्राह्मण बना तो उसमें मेरे भगवान की भक्ति जागृत हो गई, भगवान शंकर की भक्ति करने से राम जी की भक्ति प्राप्त होती है, ये बात उसने जनाई। तो राम जी की भक्ति हो गई मन में, अब राम राम करूं, भक्ति करूं, भगवान के दर्शन कैसे हो, क्या करूं मैं। ऐसे करते करते उत्तराखंड में घूमते हुए लोमस ऋषि के पास चले गए, जो लोमस ऋषि चिरजीवी है। लोमस ऋषि नाम इस वास्ते है कि जैसे बालू होता है रीछ, उसके बालू ही बालू होते हैं, ऐसे उनके केश ही केश संसार शरीर में है, इस वास्ते में लोमस है, लोमसा लोमो रोमो वाला रोम रोम शरीर में। तो उनकी उम्र कितनी है उसके वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी जब मरते हैं तो एक रूह तोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी है हजार शतयुग अधिक होता है, शतयुग त्रेता द्वापर कली, ये चार युग एक चतुर्युगी, ऐसे हजार चतुर्युगी होती है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और हजार चतुर्युग के बराबर ऐसा ही रात होती है। इन रात और दिनों से आठ पहर दो पक्षर फिर महीना होता है, महीना में फिर आयन होता है, छह महीना उत्तरायण सो दक्षिणायन, और बारह महीना पुराण वर्ष होता है, ऐसे वर्षों से सौ वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। ऐसे गिनती से सौ वर्ष की आयु होकर ब्रह्मा जब मरता है तो लोमस ऋषि एक अपना केश उधार देते हैं, वे बाल देना चाहिए बड़ों को, जो बड़े हैं ब्रह्मा जी, लोग भद्र होते हैं ना, आजकल तो भूल गए होंगे पता नहीं। एक कवि ने कहा है, मरता जब माई तो मुंह से मुंडा था मानवी, मरता जब माई तो मुंह से मुंडा था मानवी, आज रोज मुंडा बढ़ रही है तो चाली अद्भुत सकरिया, आज रोज ना मुंह से मुंडावे, आज बड़ी बिजली से चाली है। तो मरता जब माई तो मुंह से मुंडा था मानवी, अब रोज मुंडा बढ़ रही है तो चाली अद्भुत सकरिया। तो वे केस देते थे, तो लोमस ऋषि कहते हैं ब्रह्मा जी तो हरदम मरते ही रहते हैं, कहाँ तक केस दे, सब कटावे कैसे है, एक केस दे दिया उनकी आदमी ने बस। अब उम्र कितनी है कि एक केस दे जीते ब्रह्मा, और ऐसे ब्रह्मा की आयु भी वो सब केस सबके सब खत्म हो जाए तब लोमस ऋषि मरे। तो उनके अभी तक कहते एक अंगुली टिक है, इतनी जगह खाली हुई है अभी तक। तो इतनी बड़ी आयु लोमस ऋषि की, उस लोमस ऋषि के पास गए काकभूषण जी पहले जन्म में ब्राह्मण जन्म में ब्राह्मण के पास गए, तो उनसे जाकर भगवान की बात पूछी। तो भाई इतना दूर तू आया है उत्तराखंड में, और ऐसा ब्राह्मण है तू, समझ करके वे ज्ञान का उपदेश देने लगे। नहीं मेरे तो भगवान की भक्ति की बात कहो, तो बार बार वो अपने ज्ञान की बात कहे, वो उसको काटे और भक्ति की बात पूछे। ऐसे उत्तर प्रत्युत्तर करते करते लोमस ऋषि को तेजी आ गई कि बायसी वो सब ही नहीं डरे, जरा कौवा जैसे डरता रहता है, तुम बातों से डरता है, मैं ठीक बताता हूँ सुनता नहीं, मैं ठीक बताता हूँ बात की, ज्ञान की बात है, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, फिर मरे न जन्मे सदैव मुक्त हो जाए, ऐसी बात बताऊ तुम सुनता नहीं। तो ऐसी बात करने पर भी उनके मन में है ये ज्ञान की बात कहते हैं, ज्ञानी तो निर्विकार होते हैं, ये महाराज तेजी आ गई, मन मन में ऐसा विचार किया, फिर प्रश्न किया, फिर तेजी आ गई। तो उन्होंने फिर कहा जा शपथ हो पक्षी चंडाला, मनुष्यों में ब्राह्मण थे, पक्षियों में चंडाल पक्षी बन रहे, पक्षियों में ऊंचा पक्ष नहीं चंडाल बन जा कौआ हो जा। तो कौआ हो गए, कौआ हो जाए पर बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत ठीक महाराज, अब कहीं ऋषि पुनियों के पास जाना पड़ता है तो मैं पैरों पैरों जाता, अब उठकर चला जाऊंगा, बड़ी अच्छी बात है, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। अब नहीं कुछ भय न दीनता आई, ना दीनता आई ना भय हुआ कि मेरे को कौवा बना दिया, कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा हुई। ऐसे जब दीनता महत दीनता देखी, ऐसी सज्जनता देखी, महान सहनशीलता, तब लोमस ऋषि के ऊपर असर पड़ा कि इतना मैंने कड़ा साप दे दिया फिर भी बड़ा प्रसन्न हो रहा है। तो बुलाया उसको, बात क्या है? तो कहते हैं काकभूषण जी, मैं देखता हूँ ऋषि का दोष है ही नहीं, ऋषि ने जो साप दिया उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान भीतर से प्रेरणा करते हैं, उससे मेरे कौवा बनाया, तो भगवान की इच्छा से कौवा बनाऊ मैं, तो कौवे का शरीर छोड़ा दी गए, भगवान की भक्ति कौवे से ही करता है, किससे भक्ति हुई, ये मेरे को सबको सबसे प्यारा है, जैसे पाठ कीटते हुए ताते पाठ नंबर रुचित कृमि पाले सबको, यद्यपि अपावन पर प्राण सम, तो ऐसे कौवा का शरीर खुश हो गए। उसे फिर उन्होंने काकुषि जी ने कहा, तो लोमस ऋषि ने तो फिर महाराज से पूछने लगे, तो महाराज रामायण सुनाई और फिर राम जी का ध्यान बताया, बाल रूप भगवान का ध्यान बताया, वो ध्यान दिया, उस ध्यान से राजी हुए। तो फिर ऐसा दे करके उसे वरदान दिया कि अब जाओ तुम जिस स्थान रहोगे योजन पर्यंत, चार योजन पर्यंत माया नहीं जाएगी वहाँ, अगर तुम ऐसा हुआ हो। तब वहाँ अंत में कहा है कि भक्ति पक्ष हट कर ही रहे दिए महामुनि साप, मुनि दुर्लभ बर पाए हूँ, मुनियों ने दुर्लभ ऐसा बर मिला, देखो भजन प्रताप। तो भजन क्या हुआ? भजन उसमें ऐसा दंड देने पर भी प्रसन्न होते हैं, और प्रेरित रघुवंश विभूषण भगवान की तरफ भी वृत्ति है जिनकी, तो तीव्र भक्ति हो गया, ऐसे में भी खुश होता है, सुख में दुख में हर दिन प्रसन्न होता है, सब भगवान की इच्छा से मानता है, भगवान की इच्छा से हुई है, ऋषि का दोष नहीं है, और प्रेरित रघुवंश विभूषण, तो ये हरेक काम में भगवान की कृपा ही मानता है, सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में हानि में लाभ में जो कुछ परिस्थिति आती है उसमें केवल भगवान की कृपा मानता है, भजन करता है, ये तीव्र भक्ति हो। तो देखो भजन प्रताप, तो भजन प्रताप भजन कोई नाम जप करे तो नाम जप नहीं है, वास्तव में भगवान की भगवान के विधान में प्रसन्न रहना। चार बात बताई भक्ति भगवान ने, मन मना भव मद भक्तो भव मद्याजी मांग नमस्कुरु, तो मन मना भाव मेरे में मन लगना, तो भगवान के नाम का जब ध्यान पूर्वक नाम जप करना, मन भगवान में लगा रहे हरदम, मत भक्तो भाव और मैं भगवान का हूँ, असाफ ज्वाइन जाए जनी भोरे मैं सेवा करूँ पति पति मोरे, और मध्यादि मेरे रही पूजन कर यद करो श्री दर्शनाश कैसे, सब काम पूजन ही करता है, मांग नमस्कार विधान में संतुष्ट रहता है, सुख आवे दुख आवे उसमें नमस्कार करने पर कहता है कि अब आपसे मारो चाहे तारो आपके मैं तो शरण हूँ, ऐसे नमस्कार करने की चार बातें हैं। ये चारों बातें आचरण में ठीक आ जाए ये है भक्ति, ये आनी चाहिए। दूसरा काम सब करेगा पर करेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसके और कोई बात नहीं, और कोई जरूरत नहीं है। संसार की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, भाई भौजाई भतीजों की सेवा करता है, स्त्री पुरुष का पालन स्त्री बच्चों का पालन करता है भगवत प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब काम करता है। तो नौकरी करता है चाहे वो पढ़ाता है चाहे लिखाता है, चाहे पढ़ता है चाहे लिखता है, चाहे चिंतन करता है चाहे पुस्तक पढ़ता है, चाहे सो काम सामने आता है वो भगवत पूजन रूप से ही करता है। ये सब भगवान की पूजा है, जो कुछ होता है भगवान की पूजा है। इस तरह से भगवत परायण हो जाता है, वही तीव्र भक्ति योग है। ये तीव्र भक्ति योग तीव्र, तो तीव्र होते अकाम हो चाहे सकाम हो और चाहे मोक्ष काम हो, तीन बात बताई हुआ, अकाम सर्व काम हो मोक्ष काम हो उदार दी, तो मुक्ति चाहिए चाहे सकाम भाव करे तो तीव्र भक्ति होना चाहिए। इस वास्ते भगवान ने गीता में आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चाहता है के भक्त बताए, चारों भक्तों को उदार बताया, उदारा सर्वे मिति, सबके सब उदार है, तू भगवान की भक्ति करते हैं भगवान में लगे हुए है, संसार में न लग कर और का भरोसा नहीं, एक आस और एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, जैसे चातक होता है वो स्वाती बूंदी पीता है, ऊपर बदल का ही जमीन का जल गंगा जल भी नहीं पीता, वो भी पीता है, ऐसे एक आस और एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, ऐसे अनन्य भगवान के भक्ति में लग जाए। फिर इसमें सकाम बताया है, सकाम हो तो अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी बताया, आर्ग अर्थार्थी ये लौकिक कामना वाले है, तो आर्ग हो तो आर्ग दूरी करने में केवल भगवान की इच्छा ही मानता है कारण, और उनसे ही मांगता है, संसार को सहायता करे तो उनसे नहीं चाहता। ऐसे अर्थार्थी है धन की इच्छा होती है तो भगवान से ही लेता है और की नहीं, ये उनका होता है अनन्य भाव होता है। तो सकाम हो जाना तो कामनाएं पूरी कर दो तीव्र भक्ति हो, और निष्काम तो तीव्र भक्ति हो, और मुक्ति चाहे तो तीव्र भक्ति हो, एक ही साधन है सबका, तो वे कामना फिर कामना मिट जाती है। जगत जाती है कौन जाती है जो जिये जाती है जाने की जाने ही रे, जय जाचत जातकता जरी जात जो जारत जोर जहा नहीं रे, जगत जाती है कौन किसी कुछ नहीं मांगे, अरे मांगना है तो भगवान से ही मांगे और किसी से नहीं, पतिव्रता कुछ नहीं चाहती, कुछ भी चाहती तो पति से ही, मन चाहना मात्र से वो दशा दो हो जाता है, एक दर तो कुछ भी ना चाहे सेवा करे, तो ज्ञानी प्राथमिक में ही मत चारों उदार सर्वी थे, तो सब तरह की इच्छा हो कुछ भी हो केवल भगवान की इच्छा भगवान की मर्जी के सिवा और किसी से कुछ लेते ही नहीं चाहते ही नहीं, देने पर भी स्वीकार नहीं करते, लेंगे तो भगवान से ही लेंगे, छोटे से क्या लें भगवान से लेंगे हम तो। ऐसे भगवान के परायण होता है सकाम भाई और निष्काम भाई और मोक्ष काम है वो जिज्ञासु, सकाम तो अर्थार्थी और जिज्ञासु जो परमात्मा चाहता है, और नाकाम मुझे कामना नहीं है, ये ज्ञानी भक्त है प्रेमी भक्त है भगवान का, ये प्रेमी भक्त है, ये चार प्रकार के भक्त है ना, यहाँ ज्ञानी भक्त भगवान के तत्व को जानना महत्व को जानना प्रभाव को जानना वो ज्ञानी है। जैसे है भगवान का स्वरूप है ना, चौथे अध्याय में भगवान की बात वास्तव पढ़े उनमें आया है, ऐसे वो ज्ञान ज्ञानी भक्त है भी तत्व वेत जन्म कर्त में दिव्यम एवं जो वेत्य तत्व था, तो ये तत्व करके निर्गुण ज्ञान नहीं है, जन्म कर्म में दिव्य भगवान के जन्म कर्म के दिव्यता ज्ञान है। ये ज्ञानी वहाँ ज्ञानी है। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, तो भगवान के कर्म जानता है तो भगवान ही है सब कुछ। तो गीता भर में ऐसे ऐसे ज्ञानी भक्त की महिमा की है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ज्ञानी के लिए दुर्लभ नहीं बताया है, योगी के ऐसा दुर्लभ नहीं बताया है, भगवत भक्त के लिए दुर्लभ बताया है। तो ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, गीता की दृष्टि से ऐसा भक्त है वो अत्यंत दुर्लभ है। वो भगवान को ज्ञान अत्यंत मेरे प्यारा है, मैं उसको प्यारा हूँ, प्रियो ही ज्ञान अत्यर्थम अहम असत मम प्रिय, उस ज्ञानी को मैं अत्यंत प्यारा हूँ, अज्ञानी मेरे को प्यारा है। तो उसमें संसार की सत्ता उड़ जाती है। चार प्रकार से मैं कहता हूँ, भगवान सब में भगवान परिपूर्ण है और सबका संसार भगवान के ही अंश में है और भगवान का ही सब प्रजा है, प्रजा सबके मालिक भगवान ही है और संसार मात्र भगवान खुद भगवान ही है। चार प्रकार से, चाहे भगवान सब में परिपूर्ण व्यापक मान ले, चाहे संसार मात्र भगवान के एकांश है, एक अंश में है भगवान के है, अच्छा भगवान मालिक है, ये भगवान की प्रजा है और एक स्वरूप से साक्षात भगवान ही है। सब कुछ जो कुछ दिखता है वो भगवान ही है, इसमें भगवान है ये सब कुछ, इसकी मैं बहुत ज्यादा कही है। वासुदेव सर्वम यदि महात्मा सतुर्लभ, तो सर्वम का वासुदेव सर्वम, जो तो व्याकरण जानने वाला हो शास्त्र तो वो यहाँ शंका होगी। सर्वम वासुदेव, वासुदेव सर्वा, तो सर्व शब्द पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में सब में आता है, फिर वासुदेव सर्वम ये बैठती नहीं बात। व्यधिकरण कैसा हुआ, या विशेषेषु दृश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तया प्रायस्ताय कर्तव्य समानार्थे विशेषण, तो वासुदेव सर्वम तो सर्व कहना चाहिए। तो सर्वम कहने का तात्पर्य है कि सर्व सर्व और सर्वम तीनों का मिलान करोगे तो एक शेष नपुंसक रहता है व्याकरण में। एक शेष नपुंसक रहने से स्त्रीलिंग नपुंसक पुल्लिंग साथ में आ जाते हैं। तो सर्वम कहने का मतलब है सब कुछ, जो स्त्री है पुरुष है नपुंसक है जड़ है चेतन है स्थावर है जंगम है अच्छा है मंदा है जड़ है जो कुछ अच्छा है सब कुछ परमात्मा ही है, ये अर्थ लेने के लिए सर्वम शब्द आया। तो सब कुछ परमात्मा है, देखे जो ही ऐसा भजन करने वाले का संसार रहता ही नहीं, संसार बहुत जल्दी मिट जाता है। विवेकी जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं उसके विवेक में सत असत का विवेक करते हुए असत का त्याग है सत का ग्रहण है, वहाँ असत के त्याग करने पर भी मन में एक सत्ता रहती है असत की। इस वास्ते विवेक मार्ग इतना तेज नहीं है जितना भक्ति मार्ग तेज है। वासुदेव सर्वम, वहाँ असत सत्ता रहती ही नहीं, कुछ भी नहीं रहता, भाव भी नहीं रहता। तो सबसे श्रेष्ठ ये भक्ति को भगवान ने गीता में बताया है। गीता में भक्ति की प्रधानता है। अंत में ये सर्व कुछ तम बताया हुआ, मन मना भवकार सर्व धर्मांतपति मामेकम शरणम व्रज इदं ते नात्वस्ताय, दोनों को निषेध करके बीच में बताए। तो भगवान की भक्ति की बात बहुत विशेषता से कही, भगवान के प्राण हो जा, भगवान के शरण हो जा, भगवान के आशीष हो जा, भगवान की तत्म तत्कथनम अन्योन्यम तत्पी, कई तरह के काम होते हैं उसमें, सब काम भगवान का काम है। पढ़ाई करता है तो भगवान अर्पण करता है, व्यापार करता है तो भगवान अर्पण करता है, खेती करता है तो भगवान का अर्पण करता है, नौकरी करता है तो भगवान का अर्पण करता है। हम पंचामृत बताते हैं ना, भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ और भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और प्रसाद से ही भगवान के जन है माता पिता श्री पुत्र पोषी वर्ग, इसका पोषण करता हूँ भगवान के प्रसाद से, ऐसे जिसका भाव हो गया वो तीव्र भक्ति हो गई, सब भगवान के लिए है। उसके अलग अलग रूप नहीं रहते, जैसे अग्नि में आप लकड़ी डालो पूरा करकस डालो, चाहे पत्थर रख दो चाहे लोहा रख दो चाहे कंकर पत्थर रख दो, उसमें सब चमकने लगता है, सब एक अग्नि रूप हो जाता है। ऐसे भगवान के अर्पण के सब का सब ही सच्चिदानंदमय हो जाए, चमक उठेगा, उसमें जड़ता नहीं रहेगी। सब भगवान का सर्वम, सब परमात्मा ही है। इस तरह से जिसका मन है वो श्रेष्ठ है। तो इसमें आदमी को चाहिए कि हर एक में भगवत भावना है, भगवान है, भगवान ही भगवान है। भगवान ही अनेक रूप से, स्त्री रूप से, पुरुष रूप से, जड़ स्थावर जंगम स्थावर रूप से, जंगम रूप से, और पत्थर आदि जड़ रूप से, चेतन रूप से, उनमें अजल सर थल सर नव सर नाना ये जंग चीतन से सब में जो भगवान ही है, केवल भगवान है, ऐसा उपासना करता है तो निहाल हो जाता है। एकादश सेवा आया है, नरेश भिक्षणम मद भावम पुंसो भाव है तो चिरात। मनुष्यों में भगवत भाव करे, मनुष्य है भगवान है, ये भगवान है, स्त्री रूप से आए, पुरुष रूप से आए, शुद्ध रूप से आए, अशुद्ध रूप से आए, क्रूर रूप से आए, सौम्य रूप से, अक्रूर है, क्रूर के समदक्ष पंडितों में था, सब में भगवान थे, भगवान है, भगवान ही रूप से आए। तो जो पाप करते हैं, अन्याय करते हैं कि भगवान के है, सब भगवान ही है। अभी कलयुग की लीला करते हैं, कलयुग में कलयुग की लीला ही करेंगे। भगवान सूर बड़े नक्ष में लिए तो वो सूर बन गए, उसे युद्ध किया है, वो बने सरे हरे जंगली, ऐसा कहता है भगवान। तो वैसे ही है, तो जैसा बनता है वैसे ही करते हैं। ऐसे भगवान के अनेक रूप है। धरे अवतार चौरासी अलख 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 अलख, धरे अवतार चौरासी अलख, 84 लाख अवतार है भगवान का। सब जीव छोटा बड़ा सब भगवान है। ऐसे भगवान को बनता है तो वो सबसे ऊंचा माना गया है। सब है भगवत बुद्धि, मनोवाक काय वृत्ति, मन से, वाणी से और बर्ताव से भी भगवान के साथ बर्ताव करे, दर्शन के साथ बर्ताव करता है, मस्त हो जाता है, सबकी सेवा करता है। सब भी बिजनौर में एक कन्हैया लाल थे, और वो कन्हैया भगत लोग कहते थे, ऐसी मैंने बात सुनी है। तो उसको धनी आदमी था, रात्रि में डाकू आए, ये पिस्तौल लेकर आए, तो उसने प्रश्न किया कि आप इज्जत लेना चाहते हैं, प्राण लेना चाहते हैं, धन लेना चाहते हैं, जो लेना चाहे ले लो, प्राण लेना चाहे तो गोली मार दो, इज्जत लेना चाहे तो दुकान पर बस कर दो, तो धन लेना चाहो धन ले जाओ। तो क्या हमें धन लेने गया है, तो तिजोरी में आज चाबी फेंक दी, आज चाबी है और आज तिजोरी पड़ी, जितना चाहिए ले जाओ। तो 10,000 कितने रुपये लिए उन्होंने, इसमें लेकर चले गए। सुबह पूछा वही रात डाका पड़ा, तो वो कुछ नहीं किया। कलेक्टर ने पूछा कन्हैया तेरे रात डाका पड़ा गया ना, डाका नहीं पड़ा भाई, क्या हुई कि भगवान आए थे आधी रात को, काम बहुत जरूरत पड़ गई भगवान की, बहुत आवश्यकता हो गई, तब रात में नींद उड़ा कर आधी रात को आए, बहुत आवश्यकता थी। तो मेरा तो काम महाराज भगवान की सेवा करने का है, कि महाराज आप क्या लेना चाहते हो, तो धन लेना चाहते, आप चाबी ले जाओ, आप मर जाओ, आपका धन है आप ले जाओ। तो मेरा डाका नहीं पड़ा, मेरे तो ठाकुर जी आए थे, जब ठाकुर जी की जरूरत थी, ये तो आधी रात क्यों आ, ज्यादा जरूरत पड़ी है तभी ना आधी रात, तो इस बात दे दिया, डाका मेरे नहीं पड़ा। तो भक्तों का ये भाव होता है, बर्ताव में भी उसमें भी ये भाव होता है। ऐसा तीव्र भक्ति योग होता है, उसमें तुझा नहीं रहता, फिर भगवान ही भगवान, संसार लुप्त हो जाता है। अब लोग काम अब क्रोध कुछ नहीं रहता, अब साब है। नरेश भिक्षण मद भाव हम पुंसो भाव है तो जरात, स्पर्धा सुया तिरस्कारा साहंकार अभियंती, अहंकार के शायद सब दोष मिट जाते हैं। हरदम भगवान है भगवान ही भगवान है भगवान है भगवान है, इसमें तो तीव्र तो ये है बस नहीं। अब पहले आरंभ में ऐसी नहीं होती है, तो उद्देश्य ये होता, पहले जैसे निष्काम भाव सर्वथा हो जाए, केवल भगवान के परायण हो जाए, केवल एक तत्व ही तत्व का अनुभव हो, ये तो आखिरी बात है। पर उद्देश्य यही है पहले कि तीव्र भक्ति करना है, मैं तो सब में भगवान को ही देखना है, गलती होती है उसको सुधारता चला जाए और भगवत भाव बढ़ाता चला जाए। तो उद्देश्य पहले बनता है फिर कार्य होता है। आप यहाँ सत्संग में आते हो तो उद्देश्य पहले बनता है, सत्संग में जाना है फिर वहां से चल कर यहाँ आते हो, तो उद्देश्य पूरा बन जाए भक्ति का, हमें और मतलब नहीं है। निंदन तु नीति निपुणा यदि वास्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम, अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रवचरंत पदक न धीरा। कहते हैं बड़े अच्छे समझदार तुम्हारी निंदा करते हैं, तू कहता है कि नंदन तू न्यायात पथ प्रवचरंत पदक न धीरा। न्याय रास्ता ठीक हम अपने उद्देश्य के अनुसार ठीक चल रहे हैं तो निंदा करे तो करते रहो मौज से करो। कहते लोग प्रशंसा करते हैं कि बड़े भाई तुम श्रेष्ठ हो, तैसी वही करो, हमें ना निंदा से प्रयोजन है ना प्रशंसा से। कि तुम ऐसे भजन करो तो मर जाओगे, कि कल मरते हो आज मर जाए चाहे। कहते ऐसे भजन करो तो तुम जुगन तक जियोगे, मरोगे ही नहीं। खूब अच्छी बात भजन बनेगा कि मर जाओगे, भजन करते हुए मरेंगे, बड़ी अच्छी बात। कहते हैं तुम्हारे शरीर में बीमारी हो जाएगी तो जाओगे, स्वस्थ हो जाओ, हम तो भजन करेंगे। न्याय रास्ते से नहीं, निंदंतु स्तुवंतु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु, लक्ष्मी बहुत आ जाएगी, अच्छी बात। कहते कंगले हो जाओ, रोटी मिलने मुश्किल हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत हो जाएगी। हर एक विधान में प्रसन्न रह करके तीव्र भक्ति होगी, हमारा भजन न छूटे और सब छूट जाए भले ही। पद गावा सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे थाली लोटा बिक जाओ, हमने ये करो भजन भगवान तो कुछ भी करो, सत्संग करते हम तो। सत का संग नाम ही भक्ति है, सत परमात्मा का संग है, परमात्मा के साथ ही हमारा अनन्य संबंध है, वो सत्संग है। हम करते हैं सत्चर्चा और भगवान के आगे काम करते हैं, वो उसका सत्कर्म, तो सत्कर्म है सत्चर्चा है, भगवान को याद करते हैं वो होता है सत्चिंतन। सत्संग वो होता है जो भगवान से ही प्रेम हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, केवल भगवान में प्रेम है, वो है सत्संग। सत का संग आसक्ति की भगवान संग है, वो केवल भगवान में ही, ऐसे भगवान में लग जा रात दिन, फिर जा रात और दिन हो, सुबह और शाम हो, अपपत्ति संपत्ति कुछ भी आप अपने से लेना क्या है। मारवाड़ी कहावत है कि गांव नहीं जाना वो गला ही क्यों पूछे, गांव में वो रास्ता पूछेगा हमको रास्ता है, अरे हम जाना ही नहीं है। इस वास्ते संसार की चीजें हमें लेनी ही नहीं है, हमें उसे क्या मतलब, नफा हो जाए नुकसान हो जाए तो उसे फर्क नहीं होता, नफे नुकसान में रोटी मिले न मिले फर्क नहीं होता। देखो भाई बात कहने में तो ऐसी आती है, बीते तो पता तब तो लगता है ना, कहने में कमी क्यों रखे बताओ, मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों, बात ऐसी है। तो पहले ऐसा उद्देश्य बनता है, लक्ष्य बनता है, फिर ऊपर ये आफत आती है, बड़े बड़े दुख पड़ता है तो उसे वो घबराता नहीं। जैसे काकभूष ने जो साफ दे करके ब्राह्मण से चंदन पंक्षी बना लिया तो खुशी में न भय दीन दाई कुछ आए जी, भगवान की मर्जी, तो भगवान की मर्जी में प्रसन्न रहना है, ये भक्ति है। देखो भजन प्रताप, ये भजन है, इसका नाम भजन है। सुख मिले दुख मिले, अलता मिले सुलता मिले, जो कुछ मिले न मिले अपने क्या मतलब उससे, ये हमारा ध्येय नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य तो भगवान है। देखो भगवान की भक्ति में घाटा नहीं होता, भक्ति कथन करो री जान या मैं नफा घड़ा नहीं हान, इस सौदे में हानि नहीं है, नफो ही नफो कोरो नफो ही नफो, केवल और कई तरह की बात आ जाए तो सुख आवे दुख आवे कुछ भी आवे। पति नाम जा रहे हम तो रस्ता बहुत अच्छा आ गया, परी बदलों की छाया आ गई, वृक्ष भी अच्छे हैं, चांद तो फूल लगे हुए जंगल में, जिनकी सुगंधि आ रही है, शांति मिल रही है, ऐसा रास्ता मिल जाए। और कहीं चढ़ाई आ गई, घाम जोर से तप रहा है, और इधर मेला वाला ने कहीं मेला कर दिया, उसकी दुर्गंधि आ रही है, पसीना है, तो ये रास्ते के है अपने तो बद्रीनाथ जाना है, यहाँ की सुगंधि दुर्गंधि लेना है, यहाँ से चढ़ाई देखना है, उतराई की देखना है, अथवा सुगंधि दुर्गंधि देखना है, अथवा छाया और घाम को देखना है, हमें तो हर हालत में बद्रीनाथ जाना है। ऐसे जिसकी भक्ति होती है सुख आवे दुख आवे आराम आवे कष्ट आवे आदर होवे निरादर होवे निंदा हो जाए प्रशंसा हो जाए अपने से लेना क्या है, ये तो हमारा ध्येय नहीं है। तो ध्येय नहीं है उस बात में क्या कुछ भी हो जाए, आपका ध्येय नहीं है वो चाहे अच्छा और मंदा हो क्या मतलब उसे, हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य हमारा ठीक हो रहा है तो ये दूसरी बातों से अपने पर कोई असर नहीं पड़ता, एक भगवान का ही असर पड़ता है। ऐसे तीव्र भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम परम पुरुष का भजन करे, ये तीव्र भक्ति योग है। आप समझो आप ही आ जाए तीव्र का मतलब केवल भगवान के, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई है ही नहीं हमारा। सबके साथ संबंध है, पर सबके सेवा का संबंध है, किसी लेना नहीं, किसी को लान प्राप्त करना नहीं है, मेरे तो फिर धर्म पाल दूसरा केवल भगवान अन्य आश्चर्यंतो माम ये धना पशुआ तेषाम नित्य धर्म योग क्षेम पाम अन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति निश्चित हम सुलभा अन्य चेता मई ये मनाथ मई बुद्धि निवेश मत चेता मत जता प्राण बोधियंत परसम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंत च रमंती च। ये जो अनन्य भाव है ये अनन्य ये तीव्र भक्ति, अन्य कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं। अब आप सुनो आप आ जाएगा समझ में, भक्ति होगा आ जाएगा समझ में, ये लक्ष्य है। ऐसे करें कोई अनन्य भक्ति। अब इसमें कोई बात है पूछो, कोई शंका हो तो पूछो, जिन्होंने पूजा दिया उनके कोई मन में फिर पूछ लो, हमारे जैसे समझ में आ जैसे कह दिया भाई आओ तो पूछ लो। ये बात मौत हो रही है, एक लक्ष्य बनने पर बहुत शांति मिलती है। हमें ये काम करना है, हमने साधुओं को देखा तो वे सब काम किए बल भोजन में लग गए, तो आपसे हम एकांत में थे दोनों ही, एक जंगल में स्थान था वहां रहते थे, तो रात्रि में बोले कि हमारे बहुत मौज है। वो क्या मौज है? हमारे करना कुछ नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या लेना है, हमें क्यों भगवान जब चलना है, कितना आनंद हुआ, झंझट सब मिट गए, एक ही भगवान लगना है। आनंदा समाये बारे घूम करके आए तो छत पर चढ़ गए, तो छत पर चढ़े तो वहाँ सामने ही गढ़ है ने? राजा जी का, वो सामने रोशनी दिख रहा, सामने दिख रहा गढ़। तो बोले कि गंगा सिंह जी से मैं सुखी हूँ। राजा थे गंगा सिंह जी महाराज बीकानेर के, तो बोले कि मैं राजा जी से मैं सुखी हूँ। मैंने पूछा, मैं जानता था ना, पूछा वो स्नान करो तो लंगोटी दो है कि एक, एक ही है, सूती जो पहन लेता हूँ, दो लंगोटी नहीं स्नान करेगा तो वो सूती जो पहन लेता हूँ। अब कोई पूछे जा गंगा जी ने सू क्यों लंगोटी पहन है ही नहीं, एक ही है इतनी रोशनी लग रही है उससे मैं बड़ा सुखी हूँ। मेरे कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, एक भगवान के भजन में लगा है बस। ऐसी बात नारायण 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 नारायण।